ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவானந்த லஹரி, பிரசன்டட் பாய் சுவாமி ஸ்ரீ ஆத்மானந்தகிரிஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
उसमें से जो निकला हुआ है सुगंध, पादरूपी अरविंद कमल फूल कैसा है वो, उसकी सुगंध कैसी है? दिव्येर भेदो युक्तेर दिव्य गंधई अमंदई, मंद नहीं है, अमंद है यानी तीव्र सुगंधित है। इसका सुगंध तो मंद हो चुका है ना, तो तीव्र सुगंध तो जिस समय बगीचे में तोड़ोगे उस समय का सुगंध वो तीव्र होगा। तो दुर्गंध से अनभिभूत होने वाली सुगंध या समस्त दुर्गंध को दुर्वासना को अभिभूत करने की क्षमता वाली सुगंध वो तो भगवान शिव के चरण से ही प्राप्त होगा। उससे अपनी चेता पेटी को सुगंधित बनाओ तब दुर्गंध हटेगा। और जब सुगंधित होगी चेता पेटी तब तक तुम्हें भी वहां रहने में आनंद आएगा, तो परमात्मा को भी आनंद आएगा। वाह क्या कहना है ना। गुरुस्नान जी महाराज आते हैं ना, यहां ये हॉल तो पूरे पूजा के लिए समर्पण होता है ना? बढ़िया मंच लगता है, बढ़िया सिंहासन पूजा के भगवान के दरबार होता है, और उस पूजा में ऐसे इत्र और ऐता सेंट क्या 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 फूल पूरा का पूरा है, सुगंध से भर जाता है कमरा। दरवाजे से अंदर घुसते ही मग 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 मग। कमरे में आने के बाद कोई काम हो तभी जाना पड़ता है बाध्यता से, नहीं तो बैठे रहो आनंदित हो है? तो तुम्हारा चित्त भी इसी तरह सुगंधित युक्त बनाओ। लेकिन वो सुगंध किससे? पादारविंदम दिव्य गंध शिव चरण रूपी कमल से निकले हुए सुगंध से सुगंधित करो, तो वो शिव का चरण यानी खुद शिव वहां प्रवेश कर सके। ये भक्ति की पराकाष्ठा है, यानी अपने चित्त को तुम निर्मल बनाओ। आशा पास क्लेश दुर्वासनादि भेदा भेदन करने में समर्थ, हटाने में समर्थ। दिव्य गंधई रमंदही आशा साटी कश्य पादार बिंदम, ये शिवजी का नाम है वो क्या ना? आशा साटिका, ये शिवजी का नाम है, कभी सुना है? आज सुन लो। आशा साटिका आकाश रूपी धोती पहने हुए का चरण ले जी, आशा साटिकस्य पादार बिंदम, आकाश रूपी साड़ी माने धोती कपड़े पहने हुए का चरण, उस चरण से निकलने वाली सुगंधी, उस सुगंधी से चेता पेटी अपने चित्त रूपी बक्से को तुम क्या करो? वासिताम सुवासिताम सुगंध से भरो। लोग कहते हैं ना, पुरानी कहावत है ये, हींग नहीं तो हींग बांधा हुआ कपड़ा, हींग निवास। भले उसमें हींग नहीं है लेकिन हींग का वास तो है ना उसमें। इसीलिए जिस कपड़े में हिंग बांधा हो, कपड़े ही इतना सुगंध है, हिंग की वासना से भरा हुआ हो, तो स्वयं हिंग की जो डल्ली है उसमें कितना सुगंध होगा। इसीलिए भगवान को ध्यान करने वाले व्यक्ति का चित्त रूपी पेटी ही सुगंध से भरा हुआ हो तो उसके चरण में और कितनी दिव्य सुगंध होगा। है? जिसके चरण की छाप उसके हृदय में पड़ गया उतनी में इतना सुगंध है तो उस चरण में कितनी सुगंध होगी भाई। चेता पेटी बासिता में तनो तु। और आगे बोलते हैं, कल्याणीनम सरस चित्र गतिम सवेगम सर्वोंगितज्ञम सर्वोंगितज्ञम अनघम द्रुवलक्षणाढ्यम चेतस्तुरंगम अधिरुह्य चस्मरा चरस्मरारे तेन समस्त जगताम वृषभाधिरूढ़। संबोधन है इस श्लोक में भगवान शिव के बारे में शंकराचार्य जी ने दो संबोधन का प्रयोग किया। एक संबोधन तो है स्मरारे, स्मरा माने कामदेव का शत्रु यानी कामदेव को नष्ट करके दग्ध करने के बाद सभी देवताओं के अनुरोध पर कामदेव को जीवंत किया, लेकिन किस रूप में? स्मरण के रूप में जीवंत किया। पुराण का प्रसंग यह है, तुम लोगों ने कई बार सुना है, कि देवता और असुरों के बीच में बड़ा भारी घमासान युद्ध होता रहा, और जब भी युद्ध हो तो देवता लोग तो हार जाए, असुर लोग ही जीते। उन असुरों में से एक असुर था तारकासुर, असुर का नाम था तारकासुर। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने जब कहा वरदान मांग, तो उसने कहा कि मैं कभी भी न मरूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि यह तो संभव होगा नहीं, कभी भी न मरना हो तो तपस्या से प्राप्त नहीं होगा, वह तो वेदांत से ही प्राप्त होगा। वो चीज तो ब्रह्म विद्या से प्राप्त हो सकता है और किसी साधन से नहीं, और क्योंकि तू असुर है इसलिए ब्रह्म विद्या में तेरी वृत्ति जाएगी नहीं। तो दो विकल्प हैं, या तो ये असुरी वृत्ति छोड़कर दैवी संपद युक्त होकर ब्रह्म विद्या का आश्रय ले तो अमर हो जाएगा। अब असुरी वृत्ति को छोड़ नहीं सकता है तो ब्रह्म विद्या प्राप्त होगा नहीं, इसलिए तू अमर तो हो ही नहीं सकता। और अमृतत्व न कर्मण न प्रजया धनेन एकेनेव अमृतत्व मानसु, केवल एकमात्र ब्रह्म विद्या द्वारा ही अमृतत्व की प्राप्ति होगी, न धनेन न प्रजया न कर्मण न प्रजया न धनेन। फिर उसने दोबारा तपस्या की, बोल भाई, बोले हमको तो अमृतत्व चाहिए न मरे। बोले ऐसा होगा नहीं, तो बार बार तपस्या करता है और वो वरदान से दिया नहीं जा सकता है। अमरपना वरदान से दिया नहीं जा सकता। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंता विद्यते अनाय। अपने स्वरूप को अपरोक्ष ज्ञान हुए बिना अमृतत्व की प्राप्ति और उपायों से संभव नहीं है। एक काम कर सकता है तू, निमित्त मृत्यु मांग, विचार कर और निमित्त मृत्यु मांग, ऐसा हो तो मेरी मृत्यु हो अन्यथा न हो। अभी बुद्धि लगा तो असुर तो था ही, चलो बुद्धि लगाता हूं। क्या बुद्धि लगाए? बोले इस समय भगवान शिव की पत्नी सती मर चुकी है नहीं, और पत्नी मर गई तो शिव दूसरे शादी तो करेंगे नहीं है। पत्नी मर गई दूसरे शादी करेंगे नहीं, और पत्नी वियोग के बाद उसके लाश को तो लेकर घूमते रहे भगवान विष्णु ने ही अपने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके गिरा दिए। उनको पता ही नहीं चला कि शरीर कहां गया। 52 जगह जो 52 टुकड़ों में बिखर गए वही 52 शक्तिपीठ हो गए, है ना। ये भी एक जगह, ऐसा भी पुराण में प्रसंग आता है। दूसरा प्रसंग आता है सती के शरीर को ढो ढो कर चल रहे हैं तो भगवान विष्णु, बुरा नहीं मानना, मक्खी का रूप धारण करके सती के शरीर में जाकर विष्टा कर दी, और उसके बाद वो शरीर धीरे धीरे सड़ के टुकड़े टुकड़े में गिर गया। ये भी पुराण में प्रसंग है, बुरा नहीं मानना, इसमें कोई किसी की भावना में ठेस लगने की बात नहीं है, ये तो ईश्वर की लीला है ना। ये भी प्रसंग है। अब भगवान विष्णु को सुअर बनने में आपत्ति नहीं है तो मक्खी बनने में क्या आपत्ति है? बोलो, उनको तो कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति तो तुम्हें हमें है, हमारे भगवान को सुअर बना दिया, हमारे भगवान को मक्खी बना दी है। अरे बाबा, सारा सृष्टि ही उनकी है, सब रूप उनका है, उन्होंने सब चीज की उपयोगिता समझकर सब रूप बने, समझे कि नहीं। सब वस्तु की उपयोगिता समझकर ही सब रूप बने, सड़ाने वाले भी वही बने हैं, सड़ने वाला भी वही बने हैं, उसके अलावा तो दूसरी सत्ता कोई है ही नहीं, उसकी लीला है, इसमें अन्यथा नहीं लेना। तब जब सती का शरीर खत्म हो गया तो वो तो समाधि लगाकर बैठ गए कैलाश में। तो तारकासुर ने विचार किया कि अब ये कभी भी समाधि से उठेंगे नहीं, तो इनका बेटा होगा ही नहीं। ब्रह्मा जी से यही वरदान मांगता हूं कि मेरी मृत्यु हो तो शिव जी के पुत्र से हो और से न हो। अब ना शिव का पुत्र होगा ना मैं मरूंगा, बस। असुर की बुद्धि बहुत दूर नहीं जाती है, असुरों की बुद्धि बहुत दूर नहीं जाती है। हम लोगों की बुद्धि तो बहुत आगे पहुंचती है। हमारे यहां असंभव नाम का कोई चीज है ही नहीं, समझ गए ना। मायायाम सर्वसंभव, शंकराचार्य ने तो यूं कह दिया है, मायायाम सर्वसंभव। माया यदि आगे है तो माया के चलते असंभव तो कुछ भी नहीं है। इसलिए तो माया को शंकराचार्य ने कहा, अघटित घटना पटी ऐसी माया। अभी तक कोई भी घटना असंभव हुए हुए घटना को भी संभव करके दिखावे, उस तत्व का नाम माया। तो माया के सामने तुम ये नहीं कह सकते हो कि ये असंभव है ना। और क्योंकि असुर माया के रहस्य को नहीं जानते हैं इसलिए कहते हैं असंभव है, असंभव है, है? बोलो। पत्ते में वीर्य को धारण करके पत्ते से बच्चा पैदा करना संभव है कि नहीं? कौन पैदा हुआ पत्ते से? द्रोण। द्रोण का अर्थ पत्ता। और उसमें वीर्य धारण करके जो पैदा हुआ द्रोणाचार्य। ले जी, क्या असंभव है बोलो? भगवान विष्णु से बेटा पैदा हुआ सकता है कि नहीं? विष्णु मेल है कि फीमेल है? हैं? विष्णु पुरुष है कि स्त्री है? तो पुरुष से बच्चा नहीं पैदा हो सकता है? हैं? हो गया ना। अय्यप्पा स्वामी, अय्यप्पा स्वामी किससे पैदा हुए? हरिहर पुत्र स्वामी ये शरणम अय्यप्पा, हरिहर पुत्र अय्यप्पा। ले जी, मां विष्णु बाप शिव, क्या असंभव है बोलो? दुनिया में असंभव है? मायायाम सर्वसंभव, असंभव कुछ भी नहीं है। मछली ने हनुमान का बेटा पैदा कर दिया कि नहीं? मकर ध्वज बोलो, क्या क्या इतिहास है। अब बोले कैसे संभव है? अरे संभव है, मायायाम सर्वसंभव, माया में तो कुछ भी हो सकता है। ब्रह्मा जी तो इस बात को जानते थे, लेकिन तारकासुर इस बात को नहीं जानता था। तारकासुर समझता था कि संभव ही नहीं है शिव का बेटा होना, ब्रह्मा जी समझते थे कि संभव है, लेकिन बोला नहीं तारकासुर के सामने। बोलते तो फिर मुकुर जाता वो। बोला नहीं, बोले तथास्तु। ओ तारकासुर तो खुश हो गया, अब मैं कभी मर ही नहीं सकता। क्यों नहीं मर सकता बेटा? वरदान मिल गया है, शिव के पुत्र के अलावा और कोई मुझे मार नहीं सकता, इसलिए मैं शिव का पुत्र नहीं है इसलिए मैं मर नहीं सकता, अमर हो गया। तब तो पूरा चारों तरफ आतंक फैलाने लग गया। तो सब मीटिंग हुई केंद्रीय कमिटी का, हाँ? तो विष्णु भी वहां पहुंच गए, ब्रह्मा जी पहुंच गए, इंद्र कुबेर वरुण सब पहुंच गए। अब ये तारकासुर को मारेंगे कैसे? तो बोले उसका बेटा शिवजी का बेटा होना चाहिए, तो शिवजी के बेटा के लिए तो शिवजी की शादी करनी पड़ेगी, और शादी करने के लिए शिवजी को समाधि से जागना पड़ेगा, शादी करने के लिए शिवजी को अपनी योग्य उनको पसंद दिखी लड़की चाहिए, लड़की कहां मिलेगा। उनका प्रतिज्ञा, शिवजी की प्रतिज्ञा है सती के अलावा दूसरों को मैं पत्नी बनाऊंगा नहीं, बस वो तो प्रतिज्ञा करके चले गए। नारद जी ने कहा कि चिंता न करो, मायायाम सर्वसंभव, वही जो सती है वो पर्वत की पुत्री होकर पैदा हो चुकी है, उनको सती चाहिए ना, सती तो पैदा हो चुकी है, बेटी तो कन्या तो पैदा हो गई, पहले तो वो समाधि से जगे तब ना शादी करेंगे। लड़की खोजने का काम मेरा, किसका? नारद जी का। और समाधि से जगाएगा कौन? कामदेव ने कहा कि वो काम मेरा, मुझे छोड़ दो, मेरे लिए कोई असंभव नहीं है। बड़े बड़े को समाधि हमने तोड़ दिया है, वो कौन होते हैं? ये काम मैं करूंगा। तो नारद जी गए पर्वत में, मैनाक और पर्वत को कहा तुम्हारी बेटी पूर्व जन्म में भगवान शिव की पत्नी सती है, वो अभी तुम्हारी बेटी पार्वती होकर पैदा हुई है। ख्याल ये रखना है कि शिव के अलावा दूसरों को देना नहीं है। पर्वत ने कहा कि शिव जी तो समाधि में बैठे हैं, कैसे शादी करेंगे? बोले वो सब तैयारी हम करेंगे, तुम चिंता नहीं करो। एक काम करो, शिव जी भी यहीं कैलाश में हैं, पड़ोस में ही हैं, तुम रोज पार्वती को शिव जी के यहां कैलाश में झाड़ू झूड़ू लगाने भेज दिया करो। उनके समाधि स्थल में आसपास में जंगल में बढ़िया फूल तोड़कर ले जाके रखें, बढ़िया फल रख दें, झाड़ू झूड़ू लगाएं, ये सब वातावरण सेवा करने लगा दो उनको। बोले ठीक है, आप कहते हो तो पार्वती की तिरटी लगा दी और पार्वती को ही निमित्त बनाकर कामदेव पहुंच गए वहां। अब इसी के आधार में शिव जी को मैं जगाऊंगा। उसने फिर पंचबाण छोड़ दी कामदेव ने, तो भगवान शिव को विक्षेप हुआ, आंख खोल कर देखा समाधि से, आंख खोल के देखते ही तो वो तो कामदेव तो खुश हो गया, हे शिव जी ने आंख खोल ली है, समाधि टूट गया है, हे मैं विजय हो गया, मैं जीत गया। उद्दंड की तरह प्रार्थना करनी चाहिए थी और उद्दंड की तरह हुआ, देवताओं को सुनाने लगा, मैं सफल हो गया, मैं सफल हो गया। क्या सफल हुआ? बोले तुम्हारी समाधि तोड़ने में मैं सफल हुआ। क्यों? बोले ये तो उन्होंने तीसरा खोला और राख जा खत्म, तुरंत ही राख हो गया। अब तो सभी देवता आकर शिव जी से प्रार्थना करने लगे, महाराज आपने समाधि खोली ली है, ये प्रयोजन से ये सब किया है षड्यंत्र है। अब तो आप पार्वती से शादी कर लो, एक बेटा पैदा कर दो और उसके नेतृत्व में तारकासुर से युद्ध हो और तारकासुर मरे, मुख्य समस्या ये है। शिव जी कहते हैं कि मेरी इच्छा ही नहीं है शादी करने की, तो मैं क्या से करूं? क्यों इच्छा नहीं महाराज? कामदेव मर गया और कहां से इच्छा होगी? बोलो। बोले महाराज इसको जन्म दो, इसको जीवन दो भाई। बोले एक ही शर्त पर, ये आज से अनंग होगा, बिना शरीर का होगा, इसलिए कामदेव का नाम क्या है? अनंग। अंग वाला नहीं होगा, कोई शरीर इसका नहीं रहेगा, अनंग होगा। तो अनंग होगा तो ये है कैसे पता चलेगा? बोले जिसको इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ध्यान देना है, जिसको इसकी आवश्यकता पड़ेगी वह इसका स्मरण करे, वह उपस्थित हो जाएगा, उसका प्रयोजन पूरा कर देगा ये, इसलिए इसका दूसरा नाम होगा स्मरा। अनंग है इसलिए शरीर नहीं रहेगा, और स्मरण करते ही उपस्थित होता है इसलिए इसका नाम स्मरा हो गया। तो कामदेव का नाम स्मरा है, उसको हरण करने के कारण शिव जी का नाम स्मरा हरा पड़ा, तो उसी को संबोधन किया, तब पार्वती इसका शादी हुई। कामदेव अनंग होकर जीवंत तो हुआ, स्मरण हुआ, स्मरण करते ही पार्वती से कार्तिक भगवान पैदा हुए और कार्तिक को सेनापति बनाकर देवताओं ने युद्ध किया तारकासुर से और तारकासुर कार्तिक भगवान के हाथों मारा गया। तो तब से लेकर शिवजी का नाम स्मरहर पड़ा। हे स्मरहर, दूसरा संबोधन है वृषभाधिरूढ़। वृषभ माने नंदी, उसमें अधिरूढ़ भगवान। हमारे बंबई के सेठ लोग बरसे ही पीछे गाड़ी चेंज करते हैं, है ना? कंपनी से कोई नया मॉडल गाड़ी आ गया, इंश्योरेंस किया हुआ होता है तो पहले वाली गाड़ी एक वर्ष तक पुराना मॉडल, वो पुराना हो गया उसको फिर हटा दिया, नया मॉडल फिर खरीदो। फिर एक साल के बाद कंपनी फिर और कंपनी नए नए मॉडल तैयार करते हैं, फिर उसको हटा दो फिर। अरे हमारे बंबई के सेठ लोग हर साल गाड़ी बदलते रहते हैं। हे शिवा, सत्ययुग से तुम एक ही वाहन में चढ़ रहे हो। शंकराचार्य जी कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूं। सत्ययुग से लेकर आज तक वृषभारूढ़ एक ही वाहन है, कोई दूसरा वाहन ही नहीं मिला तुमको है? भगवान ने कहा कि क्या करूं, दूसरा वाहन है ही नहीं मेरे युग, तो मैं किस में आरूढ़ हूं? बोले महाराज, दूसरा वाहन मैं लाऊंगा, मैंने तैयार की है तुम्हारे लिए, आपके लिए नया मॉडल। क्या है बेटा? कल्याणिनम सरसचित्र गतिम सवेगम। देख लो तुम्हारी नंदी, ये तो पुराने मॉडल का है, इसमें तो स्पीड है ही नहीं, गति नहीं है, बेग ही नहीं है। बहुत कोशिश करके चलाओ तो 40 किलोमीटर पर घंटे की भी ये इसकी एवरेज नहीं है। और आजकल तो ऐसे ऐसे गाड़ी आ गए हैं भाई, वाह क्या पूछो नहीं। अब पुरानी गाड़ी है, मुश्किल से 40-30 किलोमीटर के घंटे के स्पीड ही नहीं थी। तो बोले यार सवेगम, अरे भाई इस वृषभ से हजारों गुना तीव्र गति से दौड़ने चलने वाली आपके लिए मैंने वाहन तैयार किया है। कौन है भाई और उसकी विशेषता क्या है? कल्याणिनम। ऐसा नहीं है कि अपने सवारी, अपने में सवार करने वाले सवारी का तीव्र गति से दौड़ने के कारण भी कभी दुर्घटना ग्रसित होने वाली नहीं है। आजकल तो जितने तीव्र गति के गाड़ी बन गए उतने ही दुर्घटना बढ़ गए कि नहीं बोलो है? पहले के 30 किलोमीटर के एवरेज की गाड़ी थी तो कोई एक्सीडेंट होता नहीं था, अब 100-150 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी दौड़ती है, है? बिना मौत के मरते हैं। कल्याणिनम अपनी सवारी का हर हालत में सुरक्षा करती है। सरस चित्र गतिम सवे गम है, कैसे? अभी सुना है कि एप्पल कंपनी ने नया गाड़ी तैयार किया है जिसमें ड्राइवर की आवश्यकता नहीं, गूगल ने जिसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं है, स्टीयरिंग नहीं है, ब्रेक नहीं, क्लच नहीं, कुछ नहीं, बोलो डिजिटल है, उसमें कहां जाना है उसका एड्रेस भर दो जीपीएस की तरह, जीपीएस उसमें भर दो, वो जीपीएस ही उस गाड़ी को चलाए, आप आराम से पिछले सीट में बैठो, वो उसको सब पता है, सड़क उसको पता है, कहां ब्रेक लगानी है, क्या है, किधर है, आगे क्या है, सब सेंसर लगा दिया है, वो अपने आप ही जाने। और तुम ऑफिस में पहुंच गए, घर में भेजनी है उस गाड़ी को, घर का एड्रेस उसमें भर दो और छोड़ दो, गाड़ी अपने आप घर जाएगी, अपने घर, दूसरे के घर में नहीं जाएगी वो, है? गूगल ने तैयार किया है मोनिश, गूगल कंपनी ने तैयार कर लिया है, उस ट्रायल भी हो चुका है, अब वो कमर्शियल रूप में उसको प्रोटेक्ट करने की अनुमति उसको मिलनी चाहिए प्रोफेशनल रूप में, लेकिन तैयार हो चुका है। शंकराचार्य जी कहते हैं हमने भी ऐसी गाड़ी बनाई है, सर्वेंगितम, इशारे से चलने वाली, सर्व इंगित, इंगित माने इशारा, तम वहां बैठने वाला व्यक्ति जो संकल्प करे, जैसा संकल्प करे वैसे गति, जहां संकल्प करे वहीं पहुंचे। बोलो, सर्व इंगितज्ञम, सवारी जो संकल्प करे उसके भावना को समझकर उसके अनुसार गति पकड़ने वाली। क्या सुंदर गाड़ी है। सर्वोंगितज्ञम अनघम, पेट्रोल भी नहीं घास भी नहीं, तुम्हारी नंदी तो बड़ा भारी घास खाती है। अनघम तो घास खाने के बाद तो तुम्हारी नंदी तो गोबर भी तो करेगी, करेगा तो अनघम, न घास खाना है न गोबर करना है उसने, और कोई पोल्यूशन वो छोड़ नहीं सकती है, क्या अनघम, निष्पाप, निर्दोष। ध्रुव लक्षण आढ्यम, अनेक प्रकार के लक्षणों से युक्त है। क्या है महाराज, ऐसे सवारी कहां से तुमने तैयार कर ली। हे स्मरारे चेतस्तुरगम अधिरुह्या चरा, मेरे पास चित्त रूपी घोड़ा मैंने तैयार करके रखी है तुम्हारे लिए, मेरे पास चित्त रूपी घोड़ा, चेतस्तुरगम अधिरुह्या चरा, उस पर चढ़कर तुम भ्रमण करो, चर माने भ्रमण करो, और तुम इस नंदी में चढ़कर तो अमेरिका कैसे जाओगे, स्वर्ग पाताल तीनों लोक में विचरण करना है आपको, खाली कैलाश में थोड़ी बैठना है। चर जहां इच्छा हो वहां जाओ, बढ़िया सवारी है। चेतस तुरंगम अधिरुह्य चरस मरारे नेत समस्त जगताम, ले समस्त जगताम नेता, घूमो खूब घूमो खूब घूमो, क्योंकि सबको चलाना है, सब जगह पहुंचना है, सबको देखना है, है तो आपको बढ़िया सवारी हुए बिना ये सारे काम आप नहीं कर पाओगे। वो सवारी हमने नया लेटेस्ट मॉडल का तैयार किया है, वो चेतस तुरगा, मेरा चित्त रूपी घोड़े में आप सवारी होकर चलो महाराज। वाह शिवजी तो खुश हो गए, महाराज क्या सुंदर, बिना पैसा कौड़ी के घोड़ा मिल गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।